प्यारे भाई और बहन, हम पहुंच गए हैं हमारी क्लास नंबर 40। इसका नाम है चार रथ। क्लास नंबर 40, इसका नाम है चार रथ। तो आज हम एक दृश्य पढ़ने जा रहे हैं, भविष्यवाणी वाला दृश्य, जो पुराने नियम में ज़करिया की किताब में है, जिसपे आज हम पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ते हैं ज़करिया की किताब, छठा अध्याय, 1 से लेके 8 तक। ज़करिया 6:1 से लेके 8 तक।
हे बिन्यामीनियो, यरूशलम में से अपना 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 सामान लेकर भागो, तकुआ में नरसिंगा फूको और पर झंडा
ज़करिया 6:1 से लेके 8।
मैंने फिर आंखें उठाई और क्या देखा कि दो पहाड़ों के बीच से चार रथ चले आते हैं और वे पहाड़ पीतल के हैं। पहले रथ में लाल घोड़े और दूसरे रथ में काले, तीसरे रथ में श्वेत और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े हैं। तब मैंने उस झूठ से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? झूठ ने मुझसे कहा, ये आकाश की चारों वायु हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं, परंतु अब निकल आए हैं। जिस रथ में काले घोड़े हैं वे उत्तर देश की ओर जाता है और श्वेत घोड़े उनके पीछे चले जाते हैं और जिस कबरे घोड़े दक्षिण देश की ओर जाते हैं। आगामी घोड़ों ने निकल कर चाहा कि जाकर पृथ्वी पर फेरा करें। अतः दूत ने कहा, जाकर पृथ्वी पर फेरा करो। तब वे पृथ्वी पर फेरा करने लगे। तब उसने मुझसे पुकार कर कहा, देख वे जो उत्तर के देश की ओर जाते हैं, उन्होंने वहाँ मेरे प्राण को ठंडा किया है।
तो यहाँ पे एक ज़करिया नबी ने, भविष्यवक्ता ने एक दृश्य देखा, जिसमें क्या देखा, चार रंग के रथ घोड़े जो अलग अलग दिशाओं की ओर जा रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहली बात यह है कि ये चार रथ निकल रहे हैं दो पहाड़ों में से, और ये दो पहाड़ दिखने में कैसे हैं, पीतल जैसे। अब ये चार रथ क्या है, ये रंगों का मतलब क्या है और इस दृश्य का मतलब क्या है? ठीक है, तो सबसे पहली बात ये पढ़ने के बाद तो हमें ये समझ आती है कि ये तो साधारण भाषा नहीं है, ये तो साधारण भाषा नहीं है, ये तो चिनात्मक भाषा है, चिन्हों वाली भाषा है, भविष्यवाणी वाली भाषा है, जिसमें चिन्ह इस्तेमाल हुए हैं। और इस चिन्हों को समझने के लिए, इस दृश्य को समझने के लिए हमें थोड़ा गहरा ध्यान डालना पड़ेगा। सबसे पहले जब शुरुआत करता है दृश्य की, तो क्या बोलता है, मैंने मुड़कर देखा। इसका मतलब ये है, इस भविष्यवाणी की शुरुआत को दर्शा रहा है ये। तो इसका मुड़ने का मतलब क्या है, मुड़ने का मतलब ये है कि ये विषय जिसके बारे में ये दृश्य है, ये चल रहा था। क्योंकि मुड़कर देखने का मतलब क्या है, चल रहा है कुछ, आप हो और पीछे कुछ चल रहा। मतलब ज़करिया भविष्यवक्ता के जीवन से पहले ही ये बात चल रही थी, ये दृश्य की बात, ये भविष्यवाणी की बात चल रही थी। और देखता क्या है, पढ़ो 6:1।
मैंने फिर आंखें उठाई और क्या देखा कि दो पहाड़ों के बीच से चार रथ चले आते हैं और ये पहाड़ पीतल के हैं।
अभी ये पहाड़ जो है किसके हैं, पीतल के। अभी पीतल का मतलब क्या है, पीतल जो क्या बोलते हैं, पहाड़ पीतल के। सबसे पहले पहाड़, पहाड़ का मतलब क्या होता है? पहाड़, पहाड़ का मतलब हम पढ़ते हैं दानियल 2:44-45, पहाड़ का मतलब होता है राज्य, पहाड़ का मतलब है राज्य।
दानियल
2:44-45 44 और 45
उन राज्यों के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह दूसरी जाति के
राज्य खड़ा करेगा। हाँ, आगे
दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वे सदा स्थिर रहेगा। जैसा तुमने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे पीकर मिट्टी चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि उसके बाद क्या क्या होने वाला है, ना सपने में के फल में दूर संदेह।
तो ये बात ये है कि पहाड़ का मतलब होता है राज्य, ठीक है, और अभी ये दो पहाड़ हैं तो इसका मतलब दो राज्य, दो राज्यों में से निकल रहे हैं चार रथ। तो चार रथों का मतलब समझने से पहले हमें समझना पीतल के, ये दिखने में कैसा है?
पीतल।
तो पीतल कैसा लगता है देखने में?
एकदम येलो,
पीतल सोने जैसा दिखता
है,
ठीक है। तो अगर आपको तंबू वाली क्लास याद हो तो तंबू के बाहर जो सामान, अंदर जो पवित्र और अति पवित्र में तो सोने का था, लेकिन बाहर किस 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 चीज का था? पीतल का। वेदी भी पीतल की थी और जो वो बर्तन था, कटोरा था जिसमें हाथ पांव धोए जाते थे, वो भी किसका था? पीतल का था। तो इसका मतलब ये है, पीतल का मतलब है संपूर्ण इंसान की स्थिति, यानी धार्मिकता की स्थिति, संपूर्ण इंसान की स्थिति। तो यहाँ पे दूसरे शब्दों में ये बोलो कि दिखने में सोने जैसा, तो सोना दर्शाता है स्वर्गीय चीजें, स्वर्गीय स्वभाव, स्वर्गीय चीजें, परमेश्वर का स्वभाव। और पीतल का मतलब है, पीतल का मतलब है संपूर्ण मनुष्यत्व, यानी संपूर्ण मनुष्य स्वभाव, जैसे आदम का था। तो अभी ये दो राज्य जो दो जो राज्य पीतल के हैं, इनका मतलब है दो राज्य संपूर्ण मनुष्य तत्व के, संपूर्ण मनुष्य तत्व के। पहला राज्य कब था संपूर्ण मनुष्य तत्व का? आपको पता है पहला राज्य हो चुका है संपूर्ण मनुष्य तत्व का, कब था? उत्पत्ति 1:26 पढ़ते हैं।
परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए।
तो देखो, सोना पीतल किसके जैसा दिखता है? तो परमेश्वर ने सोना किसका चिन्ह है? परमेश्वर के स्वभाव का, स्वर्गीय स्वभाव का। तो अपने स्वरूप पे बनाया, देखो आओ हम अपने स्वरूप पे बनाए। तो पहले इंसान को परमेश्वर ने कैसा बनाया? अपने स्वरूप पे बनाया, संपूर्ण मनुष्यत्व। आदम को क्या दिया? कॉपी बनाया, सोना और पीतल। दिखने में पीतल किसके जैसा लग रहा है? सोने जैसा लगता है, ठीक है। तो अपने स्वरूप पे बनाया और आगे उसको आगे बढ़ो,
समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी के पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतुओं पर भी जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखे।
तो ये है पहला पहाड़, ये है पीतल का पहला पहाड़, यानी कि पहला राज्य जो परमेश्वर ने किसको दिया? संपूर्ण मनुष्य आदम को दिया, ठीक है। तो इस भविष्यवाणी की शुरुआत होती है कब? अदन की वाटिका में, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसको राजा बनाया, तो ये है वो पहला राज्य। एक पहाड़ ये, एक पहाड़ ये, इन दोनों में से निकल रहे हैं चार रथ। तो पहला पहाड़ कौन है? पहला पहाड़ का मतलब क्या है? क्या? आदम का राज्य, जो परमेश्वर ने आदम को राज्य दिया। पहाड़ का मतलब राज्य, पीतल का मतलब स्वर्गीय स्वभाव जैसा, यानी संपूर्ण मनुष्य
जैसा लगने वाला।
हाँ, संपूर्ण मनुष्य, जिसको संपूर्ण मनुष्य का मतलब क्या है? जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाया। तो पहला पहाड़ का मतलब हो गया आदम का राज्य, जो अदन की वाटिका में शुरू हुआ। अभी दूसरा पहाड़ कहाँ मिलता है हमें? मत्ती 25:34 और प्रकाशित वाक्य 22:5।
तब राजा अपनी दाहिने और बालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन लोगो, आओ इस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है।
और प्रकाशित वाक्य 22:5।
अच्छा, फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुग राज करेंगे।
तो ये किसकी बात हो रही है?
यीशु मसीह की।
पच्चीस चौंतीस फिर से पढ़िए। 25:34
फिर रात न होगी और
नहीं नहीं मत्ती 25:34 फिर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।
मत्ती तब राजा अपनी दाहिनी ओर बालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, क्योंकि मैं भूखा था और
ये कौन है?
ये तो यीशु मसीह बोल रहा है ना।
यीशु मसीह बोल रहा है।
हाँ,
कौन है ये लोग?
इजरायली लोगों को बोल रहा है।
आपको पढ़ाया।
तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन लोगों,
ये पढ़ाया हुआ
वो फिर कलीसिया को बोल रहा है परमेश्वर।
ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर राज्य देगा। ये कब होगा पता? ये होगा
जब अब्राहम इसहाक को याकूब को इन लोगों को।
ये होगा कब? ये दूसरे संसार के बाद 1000 साल का राज्य आएगा। 1000 साल के राज्य में, जुबली में, प्रभु यीशु मसीह सब चीजों का सुधार करेंगे। और सब चीजों के सुधार में के समय में, जब ये मनुष्य जब ये सब लोग जीवित होंगे, इनको सत्य सिखाया जाएगा और इन सबको 100-100 साल का सुधरने का समय दिए जाएगा। जो सुधर जाएंगे, वचन सीख लेंगे, जो आज्ञाकारी बन जाएंगे, जो परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलना शुरू कर देंगे, ज्यादातर सब लोग चलेंगे। ये सब लोग जो आज अन्य जाति हैं, जो आज कोई भी धर्म को से नाता रखते हैं, ये सब सुधर जाएंगे। तो 1000 साल खत्म होने के बाद जब फिर शैतान छोड़ा जाएगा और उसके बाद शैतान फिर भरमाना शुरू करेगा, उसमें जो शैतान के साथ लगेंगे कुछ होंगे, 10% 100 में से 10 लोग ऐसे होंगे जो शैतान के कार्य में फिर से लगेंगे। उन सब का नाश होने के बाद परमेश्वर क्या करेगा पता है? ये राज्य खुद के पास नहीं रखने वाला है। किसको दे देगा? ये धरती के लोगों को। ये राज्य तुम्हारे लिए, ये धरती मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है, तुम्हें ही इस पे राज्य करना है। ये होंगे वो सब लोग जो राज्य करेंगे इस धरती पे। ये इनके लिए है। ये तभी तो बोल रहा है भेड़, दाएं तरफ वाली भेड़ों को क्या बोलेगा? हे मेरे पिता के आशीषित लोगों, ये राज्य तुम्हारे लिए शुरू से था और तुम इसको ले लो। तो जो नम्र और आज्ञाकारी बन जाएंगे हजार साल के राज्य में और पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, वो बन जाएंगे संपूर्ण मनुष्य। हर एक इंसान संपूर्ण बन जाएगा उस हजार साल के राज्य के बाद, क्योंकि धार्मिकता मिल गई, सत्य सीख लिया, पाप को छोड़ दिया, क्या बन गए? संपूर्ण बन गए, पाप से नफरत और प्रेम से प्रेम। तो धार्मिक बन जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे, ठीक है। ये होगा दूसरा राज्य। पहला राज्य दिया संपूर्ण मनुष्य को कब? अदन की वाटिका में। दूसरा राज्य इस मनुष्य तब को मिलने वाला है कब? हजार साल के राज्य के बाद, प्रभु यीशु मसीह के राज्य के बाद ये मनुष्य जाति को परमेश्वर फिर से राज्य सौंप देगा। अब ये बात समझ लो आप, किसी को परमेश्वर यहाँ पे नाश करने वाला नहीं है, इनको जीवन देने वाला है, एक मौका देने वाला है सुधरने वाला। लेकिन जो सौ साल के राज्य, हजार साल के राज्य में नहीं सुधरेंगे, सौ साल के समय मिलने पर भी उनको मिलेगी दूसरी मौत।
तो आपने तो ऐसे पढ़ाया था कि ये कलीसिया होगी और प्रभु यीशु कमांड में भी अफसर होंगे, दूसरे सेकंड स्वर्ग में, और अब्राहम इसहाक वगैरह
होंगे,
राजा होंगे,
होंगे होंगे होंगे, लेकिन वो हजार साल में, वो हजार साल में।
मैं वही
तो मैं आपको हजार साल के बाद की बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, यही बोल रहा हूँ। हजार साल के बाद जब प्रभु यीशु मसीह सब चीजों का सुधार कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, वापस पिता के पास लेके जाएंगे, पिता मैंने अपना कार्य संपन्न किया, और प्रभु यीशु मसीह के साथ होगी कलीसिया उस हजार साल के राज्य में राज करने वाली, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलके सुधार करेगी।
इसका मतलब यीशु मसीह का भी वो हजार साल के बाद राज स्थिर नहीं है ना, वो भी परमेश्वर के हाथ सौंप देंगे।
जी बिल्कुल, वो दे देंगे। सातवां दिन खत्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह का सुधार का समय खत्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह वो देंगे राज्य, ये लो मैंने ठीक करके दे दिया। अब ये धरती का राज्य परमेश्वर ने एक्चुअल में प्लान किसके लिए किया था? किसके लिए किया था? आदम के लिए किया था। क्या बोला था? आओ हम इंसान बनाए, वो धरती पे क्या करें, ठीक है, तो वो अपने वायदे पे कायम रहेंगे। समझ में आया?
ठीक है।
तो इन दो, ये है दो पहाड़, दो पहाड़ों, इसीलिए ये दो पहाड़ किसके हैं? पीतल के। ये मनुष्य का राज्य है। किसका राज्य है?
मनुष्य
का राज्य, लेकिन संपूर्ण मनुष्य का राज्य। अभी संपूर्ण मनुष्य किसकी कॉपी है? पिता परमेश्वर की कॉपी का मतलब ये है, उनके स्वभाव का डुप्लीकेट। मतलब परमेश्वर का स्वभाव क्या है? वो चार चीजें,
पावर, प्रेम,
यस,
ज्ञान,
वो सारी चीजें संपूर्ण मनुष्य के पास होती हैं। अभी जब मनुष्य इन सारी चीजों को अच्छे से इस्तेमाल करना शुरू कर देगा तो किसकी कॉपी बन जाएगा? ठीक है, लेकिन परमेश्वर तो नहीं बन सकते, कॉपी ही है। जैसे पीतल सोना नहीं बोल सकते ना, ऐसे ही संपूर्ण मनुष्य को परमेश्वर नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये दो राज्य हैं संपूर्ण मनुष्य के, समझ गए? ठीक है, तो ये दो राज्यों के बीच में से क्या निकल रहे हैं? चार रथ। क्या निकल रहे हैं?
चार
रथ। तो अभी परमेश्वर का हजार साल का, सॉरी, परमेश्वर क्या कर रहा है? आराम कर रहा है, आराम कर रहा है। आराम कब खत्म होगा? जब हजार साल पूरा हो जाएगा। कब खत्म होगा? परमेश्वर के लिए एक दिन का मतलब क्या है? परमेश्वर के लिए एक दिन का मतलब क्या है? परमेश्वर के लिए एक दिन का मतलब क्या है? देखा, परमेश्वर की बातें हमें याद नहीं रहती है। तो परमेश्वर के लिए एक दिन का मतलब है सात हजार साल। हाँ जी, तो ये जो दिन बोलते हैं ना, पहले दिन परमेश्वर ने ये किया, वो एक दिन का मतलब है वो काम करने के लिए 7,000 साल लगे हैं। हाँ, 7 दिन का मतलब है 49,000 साल। पढ़ लो ये बात, अय्यूब 5:19। सात से भी तेरी कुछ हानि ना हो पाएगी। तो ये बात हो रही है परमेश्वर की योजना की। परमेश्वर की योजना में 7 है ना। 6 दिन परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, 7वें दिन आराम किया। तो परमेश्वर की योजना 7 के इर्द गिर्द घूमती है। तो बोलता 6 विपत्तियों से तुम्हें छुड़ाएगा और 7वें में तुम्हारा छुटकारा होगा, ठीक है, हानि ना होगी। तो 7वां छुटकारे के लिए होगा, 6 में विपत्तियां होंगी, ठीक है। अभी 6 में विपत्तियों का क्या मतलब है? हर एक दिन को परमेश्वर ने पता क्या किया है, परमेश्वर ने 6+1 किया है। 6 में बुराई को अनुमति दी है, 7वें में छुटकारा। यानी 6,000 साल की आपको, 6,000 साल की बुराई है और 1,000 साल में आपका छुटकारा होना है। समझ में आई अब बात? तो ऐसे पूरा हो जाएगा 7,000 साल। परमेश्वर का आराम का दिन भी 7वें दिन जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये 1,000 साल का राज्य है, 1,000 साल राज्य खत्म होते ही परमेश्वर का विश्राम का समय खत्म होगा, 7वां दिन खत्म हो जाएगा। और उस दिन बोलेगा परमेश्वर, हाँ जो मैंने बनाया वो अच्छा है। नोट करना, 6 दिन तक परमेश्वर ने बोला जो मैंने बनाया अच्छा है, लेकिन 7वें दिन में ऐसा नहीं बोला, क्योंकि 7वां दिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 7वां दिन कब कंप्लीट होगा? जब 1,000 साल का राज्य पूरा होगा, जब सब 6 विपत्तियां खत्म होके 7वीं में छुटकारा का काम पूरा होके कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? अब ये देखो बात, दो पहाड़ हैं, एक है आदम का राज्य जो शुरू हुआ आदम की वाटिका में, और दूसरा जब फिर परमेश्वर इनको मनुष्य जाति को 1,000 साल के राज्य के बाद राज्य सौंप देगा। तो ये है 7,000 साल का समय। इस समय के बीच ये क्या निकल रहा है? अब याद रहेगा ना कि परमेश्वर के लिए एक दिन का मतलब 7,000 साल है। पता ये बातें हमें क्यों नहीं याद रहती हैं? क्योंकि हम ज़्यादा महत्व परमेश्वर को देते नहीं हैं। हमारा सारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह पे ही लगा रहता है, उनकी बातों पे ही लगा रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये बातें हमारे दिमाग में से निकल जाती हैं कि उनसे बड़ा भी कोई है। तो परमेश्वर के लिए एक दिन का मतलब है 7,000 साल, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक दिन का मतलब है 1,000 साल, भविष्य वक्ता के लिए एक दिन का मतलब है एक साल।
एक साल 40
ठीक है। तो इसका मतलब अब क्या है? इन दो राज्यों के बीच में जो मनुष्य के हैं, आदम का और 1,000 साल के बाद जब पूरी मनुष्य जाति को परमेश्वर राज्य सौंप देगा, इस बीच में निकल रहे हैं क्या?
चार रथ।
अभी ये चिनात्मक भाषा है। इन 4 रथों में रंगों का भी महत्व है और रथों का भी महत्व है, ठीक है। अब क्या है, पढ़ते हैं 2 से लेके 3 तक। यकराया चकरया 2 से 6 का 2 से लेके 3 तक। वही छठा अध्याय जो पढ़ रहे हैं ना।
तब मैंने
पहले रथ में लाल हुए,
पहले रथ में लाल थे,
दूसरे रथ में काले,
दूसरे में काले,
तीसरे रथ में श्वेत,
तीसरे में वाइट, सफेद और चौथे
रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े थे।
चितकबरे और बादामी चौथे में मिक्स है, चितकबरे और बादामी दो दो है, ठीक है। तो दो घोड़े चितकबरे हैं, दो घोड़े बादामी हैं, बताता हूँ गहराई में। तो देखो इनका ऑर्डर है इन रंगों का, पहली बात नोट करने वाली ये है कि ये ऑर्डर वाइज चल रहे हैं, पहले लाल आते हैं, फिर काले आते हैं, फिर ऐसे चलता है। उसके बाद दूसरी बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि इनका रंग अलग अलग है। अभी ये घोड़ों का मतलब क्या है और ये दृश्य का मतलब क्या है, ठीक है। तो चौथे वचन में जकरिया पूछता है उसे, ये क्या है, दूत जो दिखा रहा था ये दृश्य, उसको बोलता है ये क्या है, मुझे समझाओ, पूछो। देखो चौथा वचन पढ़ो आगे।
अच्छा, तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या है।
तो ये क्या है, तो हम भी सोच रहे हैं ये क्या है। तो दूत उत्तर देता है पांचवें वचन में, पढ़ो।
दूत ने मुझसे कहा, ये आकाश की चारों वायु है,
ये आकाश की चारों वायु है
जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं,
जो सारी
पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं,
उपस्थित
रहते हैं।
इसका देखो ये कैसा अनोखा सा उत्तर है, इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है, इसने बोला ये क्या है, वायु है। ये किसकी वायु है, आकाश की वायु है। ये चार वायुएं हैं, ये चार क्या है, इंग्लिश में है दीज आर द फोर स्पिरिट्स ऑफ द हेवन, स्पिरिट्स ऑफ द हेवन, चार आकाश की चार आत्माएं हैं, सही ना।
एंड द एंगल्स एंड से टू मी दिस आर गोइंग आउट टू द फोर विंड्स ऑफ हेवन आफ्टर
फोर विंड्स ऑफ हेवन। तो यहाँ पे लिखा है आकाश की चार हवाएं, केजेबी में लिखा है फोर स्पिरिट्स ऑफ द हेवन, आकाश की चार आत्माएं। आप हवा बोलो, विंड बोल लो, स्पिरिट बोल लो, एक ही बात है। आत्मा भी क्या है, सांसी है, हवा है, ठीक है, हवा है ये, ठीक है। तो ये हवा का मतलब क्या है, अय्यूब 12:10 में पढ़ लो,
बारह दस जी। उसके हाथ में एक जीवधारी का प्राण है और एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है।
फिर से पढ़ो,
12:10 है ना जी
जी।
उसके हाथ में एक जीवधारी का प्राण और एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है।
आगे
फिर 11 में, जो जीव से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते।
गड़बड़ है, इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में
is the life of every living thing and the breath of all mankind.
Breath of all mankind. बोलता क्या है, उसके हाथ में सबका आत्मा है और सारी मनुष्य जाति का सांस है, लेकिन क्या करें, breath of all mankind, breath का मतलब सांस, ऑल मैनकाइंड का मतलब सारी मनुष्य जाति, सही ना। तो हिंदी में गड़बड़ी है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ये है, ये हवा का मतलब है जीवन का सांस, वही तो बोलता है ना, मेरी नथनों में जो है जीवन का सांस,
जीवन का सांस।
तो ये चार रथों का मतलब क्या है, चार रथों का मतलब है चार जीवन या चार तरह के जीवन परमेश्वर से निकल रहे हैं। चार तरह के जीवन निकल कहां से रहे हैं, आकाश से। चार तरह के ये क्या है, जीवन है। तो सिंपल इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे समझें? अगर हम तो जानते हैं कि हम सब एक ही खून से हैं, आदम से हैं, अभी ये चार का मतलब क्या है? तो इसका इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने मनुष्य, परमेश्वर की नज़र से परमेश्वर ने मनुष्य जाति के चार बंटवारे किए। आपको याद होगा अदन की वाटिका में से निकल के चार नदियाँ, उसका मतलब क्या है, क्या है उसका मतलब? उसका मतलब क्या है भगवान?
मतलब उसमें से एक नदी को तो सुना सुनना उठता तो उसमें सुना निकलता था उसको देना,
उसका मतलब क्या है?
अदन
की वाटिका में से निकली
चार नदियाँ
निकली, क्या है उसका मतलब? दादा जी रिविजन नहीं थी
वो
आई नहीं, मैं क्या बोलूँ? अदन की वाटिका में से चार निकली नदियाँ भी इसी विषय के साथ रिश्ता रखती हैं। उसमें भी हमने देखा था कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लोगों के चार बंटवारे किए हैं, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं परमेश्वर की नज़र में ये मनुष्य जाति में चार तरह के लोग हैं, चार बंटवारे हैं। क्या क्या है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला बंटवारा जो है वो क्या है, ज़करिया 6:6 में पढ़ लो, कौन से घोड़े हैं सबसे पहले जो घोड़े हैं वो कौन से हैं?
जिस रथ में काले घोड़े हैं वह उत्तर दिशा की ओर जाता है।
तो ये देखो, काले घोड़े उत्तर दिशा की ओर जाते हैं। ये घोड़े अलग अलग रंग के हैं और इनकी दिशा भी क्या है, अलग अलग
अलग,
ठीक है। अभी ये घोड़ा, ये रथों का मतलब क्या है, ये रंगों का मतलब क्या है, ये दिशाओं का मतलब क्या है, ये दर्शाते हैं चार तरह के लोग। और पिछली बार मैंने आपको उत्तर दिशा का मतलब बताया था, उत्तर दिशा का मतलब क्या है?
परमेश्वर का जो राज्य का वो संकेत है उत्तर दिशा में, सिंहासन है ना परमेश्वर का।
उत्तर दिशा का मतलब है स्वर्ग,
स्वर्ग स्वर्ग सिंहासन का जो है ना,
उत्तर दिशा का मतलब है स्वर्ग।
स्वर्ग
तो ये जो काले घोड़े हैं ये किधर को जा रहे हैं, स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। ये 6:6 में पड़ा, लेकिन अब हम ऑर्डर फॉलो करेंगे। पहला ऑर्डर क्या है, सबसे पहले दूसरा वचन पढ़ेंगे, दूसरा वचन
दोबारा से।
हाँ,
पहले रथ में लाल घोड़े।
तो पहले रथ में क्या, कौन से घोड़े हैं?
लाल घोड़े,
लाल घोड़े हैं, ठीक है। तो लाल घोड़े हैं, पहले रथ में कौन से घोड़े हैं?
लाल
घोड़े। रथ का मतलब है एक ग्रुप, क्या एक ग्रुप
संगठन,
रथों का मतलब क्या है संगठन। तो परमेश्वर की नज़र में चार ग्रुप्स हैं मनुष्य जाति के, चार ग्रुप्स। अभी इन चारों ग्रुप्स का कुछ मतलब है, वो क्या है? पहले में कौन से घोड़े हैं? लाल घोड़े हैं। अभी लाल का मतलब क्या होता है, लाल यानी के पहला ग्रुप जो है वो लाल है, लाल का मतलब क्या है? ये कौन सा ग्रुप है ये पढ़ना है हमें, गिनती 19:2-3।
वो जो चार नदियाँ वो चार दिशाओं को दर्शाती है ना, ये मतलब है ना चार नदियाँ है ना?
चार न, उनका मतलब है चार पुनर्थान ब्रदर जी।
अच्छा,
चार पुनर्थान
19:2-3। व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है, तू इस्राएलियों से कहे कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया है,
लाल निर्दोष बचिया है,
ले आओ,
ले आओ,
जिसमें कोई भी दोष ना हो।
तो लाल का मतलब पता क्या होता है, लाल का मतलब होता है बलिदान, खून, खून का रंग कौन सा होता है, लाल, बलिदान। तो ये कौन है लाल घोड़े, ये लाल घोड़े वो है, ठीक है, जो जो प्रभु यीशु मसीह से पहले, ये लाल घोड़े वाले कौन है? ये है बुजुर्ग यानी नूह, आबिल, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, इन्होंने भी बलिदान किया। बलिदान क्या किया? विश्वास किया, पोतों का बलिदान चढ़ाया, चढ़ाया ना। प्रभु यीशु मसीह से पहले भी वफादार थे ना। तो ये लाल घोड़ों का मतलब है परमेश्वर ने सबसे पहले किस ग्रुप को सेपरेट किया, मनुष्य जाति में से किनको अलग किया? ये बुजुर्गों को, जिनको हम बुजुर्ग बोलते हैं, जो जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले क्या थे? वफादार थे। आबिल से लेके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक कौन से ग्रुप में आते हैं? लाल वाले ग्रुप में। कौन से ग्रुप में आते हैं?
लाल ग्रुप,
लाल वाले ग्रुप में। तो पहला एक पहला ग्रुप कौन है परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की नजर में? जो प्रभु यीशु मसीह से पहले वफादार रहे, आबिल से लेके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक। उसमें नबी भी आ गए सब, भविष्यवक्ता आ गए सब, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आ गया, एलिया आ गया, मूसा आ गया, नूहा आ गया, इब्राहिम आ गया, इसहाक आ गया, याकूब आ गया, अय्यूब आ गया, सब आ गए। तो ये है एक ग्रुप, समझ में आ गया, जिन्होंने बहुत बड़ा विश्वास दिखाया। इब्रानिया 11 उसका 35 से लेके 37 तक।
स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, जितने तो मार खाते थे मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुरुष स्थान के भागी हुए।
35 से लेके 37 तक।
कई एक के चट्टों में उड़ाए जाने और कूड़े खाने वरना बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए और आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षाएं की गईं, तलवार से मारे गए, फिर कंगालों में, कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालों उड़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरते रहे।
तो ये है बुजुर्ग एंशियंट वर्दी, प्रभु यीशु मसीह के पहले। ये वो ग्रुप है मनुष्य जाति में से चुना गया, जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले चुना गया, परमेश्वर ने पहले इनको चुना, आबिल से लेके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक। ठीक है, तो ये है वो लाल घोड़े। लाल घोड़े का मतलब है पहला ग्रुप मनुष्य जाति में से पहला चुने वाला, चुने जाने वाला ग्रुप कौन सा है? ये प्रभु यीशु मसीह से भी पहले जो जिनको चुना गया, हाँ दिखाया, तो वो है मनुष्य जाति में से चुने वाला, चुने जाने वाला पहला ग्रुप। ठीक है जी, तो लाल घोड़ों का मतलब समझ में आ गया। पहला ग्रुप कौन है? बुजुर्ग,
बुजुर्ग लोग जो यीशु मसीह से पहले
वफादार थे। ठीक है, वफादार मतलब आबिल, जो जो भविष्यवक्ता की कैटेगरी में आते हैं, आबिल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये। उसके बाद दूसरा रंग कौन सा है? दूसरा रंग कौन सा है?
दूसरा रंग है
काला।
काला,
ठीक है। तो काले का मतलब क्या है? काले का मतलब है, काला जो रंग होता है वो मृत्यु को दर्शाता है। तो ये वो लोग हैं जिनका मौत से लेना देना है कुछ। अभी ये कौन है? अभी ये कौन है जिनका लेना देना मौत से है, मृत्यु से है? ये धरती में से चुने वाला, जाने वाला दूसरा ग्रुप है। ये कौन है?
जो पापी लोग हैं, जो पाप करे जा रहे हैं।
तो मतलब आपका, आपके कहने का मतलब है परमेश्वर ने बुजुर्गों को चुनने के बाद जो दूसरा ग्रुप चुना वो पापियों का चुना? मतलब तो सब सब तो पाप कर रहे हैं। मैं भी पाप कर रहा हूँ, मैं भी तो मरना है, मुझे भी तो मरना है। तो दूसरा ग्रुप कौन है? मनुष्य जाति में से।
मनुष्य जाति में से।
और हम बात ही मनुष्य जाति की कर रहे हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पहला ग्रुप जो है, ये जो ग्रुप ग्रुप बनाए परमेश्वर ने, ये पूरी मनुष्य जाति में से बनाए, तो मनुष्य जाति में से एक ग्रुप चुना, जैसे आपकी आर्मी है तो पूरी आर्मी फौज ही है ना, उसमें से एक ग्रुप है ब्रिगेडियर्स का, एक ग्रुप है कैप्टन्स का, एक ग्रुप है सॉरी सिपाहियों का, एक ग्रुप है ट्रेडर्स का, सबका अलग अलग है या नहीं है?
तो ये फिर वो झूठी शिक्षा वाला ग्रुप होगा।
तो इसका मतलब ये है कि आप बोल रहे हो परमेश्वर दूसरा ग्रुप जो चुन रहा है वो झूठी शिक्षा देने वाला,
झूठी शिक्षा देने वाला।
अरे नहीं, पढ़ लो ये बात, अभी पढ़ते हैं जिनका ये याद रखना, काले रंग का लेना देना किसके साथ है? मृत्यु। काले रंग का है मृत्यु। अभी मृत्यु का साथ लेना देना किसका है ये पढ़ लेते हैं हम, रोमिया 6 उसका 3।
क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु को बपतिस्मा दिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा दिया।
देखिए तो मौत के साथ लेना देना पता किसके है, किनका है? वाचा बांधे हुए वाले जो हैं, जो वाचा बांधते हैं वो मौत का बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह की मौत का बपतिस्मा। तो ये दूसरा ग्रुप जो धरती में से चुने जाने वाला है ब्रदर जी, ये है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, ये है उसका शरीर, ये है 144,000, ये है 144,000। फिर से पढ़ लो कुलूसियां 3:3।
क्योंकि तुम जो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है।
देखो तो मौत के साथ लेना देना किसका है? कलीसिया का। कलीसिया सोच समझ कर जान कर प्रभु यीशु मसीह की मौत का बपतिस्मा लेती है, और ये वो है जो वाचा बांधते हैं। पढ़ लो भजन संगीता 50:5।
मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है।
देखो बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है, तो ये बलिदान वाली वाचा है। तो परमेश्वर का लेना देना भी उन्हीं के साथ होता है जो वाचा बांधते हैं, बिना वाचा बांधे वालों के साथ परमेश्वर की कोई डीलिंग भी नहीं होती है। उसके बाद रोमिया 12:1 पढ़ लो ये बात साफ साफ जो मैं बोल रहा हूँ अभी।
इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया पुनर्दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावना भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ।
देखो परमेश्वर को भाना चाहिए, तो परमेश्वर को भाता बलिदान वही है जीवित बलिदान जो परमेश्वर को स्वीकार हो, और स्वीकार किनका करता है परमेश्वर बलिदान? जो वाचा बांधते हैं, बिना वाचा बांधे वालों के साथ परमेश्वर कोई डीलिंग नहीं है, कोई बलिदान स्वीकार नहीं होता है, वो करते हैं अपनी अपने मन की तसल्ली के लिए। ठीक है, तो ये दूसरा ग्रुप जो काले घोड़े हैं ये है कलीसिया, ये है 144,000। तो ये भी अलग किया परमेश्वर ने दूसरा ग्रुप किससे? मनुष्य जाति से, 144,000। इसीलिए सुलेमान के गीतों में पढ़ लो ये बात, बोलते हैं मैं काली हूँ, श्रेष्ठ गीत 1:5-6।
मुझे इसलिए ना भूल कि मैं सांवली हूँ, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई।
सांवली नहीं है, इंग्लिश में काली है।
इंग्लिश में क्या?
काली, ब्लैक।
सांवली काला, कोई काला ही रंग मत, काले रंग।
डार्क, देखो डार्क, डार्क का मतलब अंधेरा होता है, अंधेरा, ब्लैक,
ब्लैक,
ठीक है। सांवली तो चलो थोड़ा ब्लैक से अलग होता है ना, सांवला,
लेकिन वो
काले में
उसी कैटेगरी में
आता, काले के में ही है लेकिन अलग होता है। लेकिन हम सीधी बात करते हैं ना, काली काले घोड़े की बात हो रही, तो सांवला हम क्यों करें, काली काली हूँ मैं, काली ऐसा लिखा है, किससे काली हुई हूँ, सूर्य से काली हुई हूँ। सूर्य का मतलब क्या है, सूर्य का मतलब है रोशनी जो चमकती है, चमकती है, ठीक है। तो सूर्य का मतलब है सुषुमाचार्य, जैसे आप जानते हो सुषुमाचार्य, ठीक है। तो ये दूसरा ग्रुप जो मेरे प्यारे और भाई और बहन, ये है दूसरा ग्रुप जो कलीसिया है, जिनको सूर्य की तपस सहनी है। सूर्य की तपस का मतलब है कलेश, गर्मी, हीट, हीट को सहना है जिसको, ठीक है। दूसरा तिमोथियस 3:12 पढ़ लो, दूसरा तिमोथियस 3:12। सूर्य का मतलब यहाँ पे है दुख, कष्ट, कलेश, विरोधता।
3:12
फिर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताकर चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे।
एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, सब सताए जाएंगे। तो ये है दूसरा ग्रुप जिसको चुना है परमेश्वर ने मनुष्य जाति में से, कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह का शरीर। और इनकी गिनती कितनी है, ज्यादा नहीं, एक भी ज्यादा नहीं, ये फिक्स है नंबर। और ये दिशा किस तरफ जाते हैं, कौन सी दिशा की ओर जाते हैं, उत्तर की ओर जाते हैं। ये उत्तर का मतलब है ये स्वर्ग में जाने वाला ग्रुप है, ये परमेश्वर की ओर जाने वाला ग्रुप है, ठीक है। तो ये है दूसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, वो कौन से घोड़े हैं, सफेद घोड़े। सफेद घोड़े का मतलब, अभी ये कौन है, ये कौन है, सफेद, सफेद कौन है, सफेद का मतलब क्या होता है, सफेद का मतलब, देखा ये आपने संसारिक बात की, शांति का प्रतीक, लेकिन सफेद का मतलब, मतलब आपको बताया हुआ है, पढ़ लो फिर से यशाया 1:18।
ठीक है
आगे।
तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे।
तो ये सफेद का मतलब होता है जिनके पाप माफ हो जाए, पाप माफ होने की स्थिति। सफेद का मतलब क्या है,
पाप।
तो ये वो ग्रुप है जिनके पाप साफ किए गए, जिनके पाप साफ किए गए। और कौन है ये ग्रुप, ये पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 7:14।
मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं।
देखो लहू से तो वस्त्र लाल होंगे, लेकिन यहाँ से लहू में वस्त्र सफेद हो रहे हैं। तो ये पता कौन ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप या तीसरा रथ, तीसरा जो संगठन है मनुष्य जाति में से, ये है बड़ी भीड़, बड़ा झुंड, बड़ी भीड़, जिसमें ये भी वाचा बांधे हुए ही हैं। इनों को बुलावा मिला, जैसे आपको बुलावा मिला आप नामी ईसाई बने, उसके बाद अभी आपको चुने जाने का प्रोसेस चल रहा है। ये चुने गए, चुने चुने पता कब जाते हैं, जब हम वाचा बांधते हैं। ये चुने गए, इन्होंने वाचा बांधी लेकिन वफादारी नहीं दिखाई, वफादारी नहीं दिखाई, इसकी वजह से ये इनाम से क्या हो गया, खो दिया इन्होंने इनाम। तो ये कौन सी कैटेगरी में आए, ये वो जो सामने हाथ में खजूर के पत्ते लेके खड़े थे। तो ये है बड़ी भीड़ जिन्होंने वचा बांधी लेकिन वफादारी नहीं दिखाई। और ये 10 कुआरियों के दृष्टांत में दिखाया है, 5 तो समझदार थी और 5 तो मूर्ख थी। मूर्ख कौन, क्यों थी मूर्ख, क्योंकि उनके पास तेल नहीं था। तेल का मतलब क्या है, तेल का मतलब क्या था, तेल का मतलब क्या होता है जी, ये पवित्र आत्मा के बिना। इन्होंने पवित्र आत्मा कहाँ नहीं कह रही कि बर्तनों में, समझदार की क्या करती थी, बर्तन में लेके जा रही थी, मशाल भी थी, जल भी रही थी, मशाल का मतलब बाइबल, और बर्तन में क्या था, पवित्र आत्मा। बिना तेल के मशाल नहीं जलती, बिना पवित्र आत्मा के वचन से ज्ञान नहीं आएगा। तो इनके पास बर्तन, बर्तन का मतलब क्या है, ये बर्तन, इधर पवित्र आत्मा, लेकिन मूर्ख कुआरियों के अंदर पवित्र आत्मा ना होने की वजह से जब रोशनी खत्म हो गई तो फिर मांगती फिर रही थी। तो ये मूर्ख कुआरियां भी कौन है, बड़ी भीड़, बड़ा झुंड, एक छोटा झुंड है, एक बड़ा झुंड है। तो तीसरा ग्रुप मनुष्य जाति में से चुने वाले जाने वाला वो है बड़ा झुंड, लेकिन इनकी दिशा भी कौन सी है, पढ़ लो वही छठा अध्याय में 6:6।
जिस रथ में काले घोड़े हैं वे उत्तर देश की ओर जाता है और श्वेत घोड़े उनके पीछे पीछे।
देखो, स्वर्ग में जाने वाला पहला ग्रुप है कलीसिया, उसके बाद दूसरा ग्रुप है ये बड़ी भीड़, वाचा बांधे हुए लेकिन वफादार नहीं। इनकी वफादारी ना दिखने का कारण पता क्या है, ये दोनों उत्तर में जा रहे हैं, उत्तर दिशा में, यानी ये दोनों दोनों को मिल रही है स्वर्गीय उदारता। इनके वफादार होने का कारण पता क्या, नहीं क्या था, नहीं मतलब ये क्यों नहीं वफादार थे, पढ़ लो मत्ती 13:22।
जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है,
जो वचन को सुनता है, सच्चाई सुनते हैं आगे,
पर संसार की चिंता और धन की का धोखा वचन को दबाता है।
अरे इस संसार की चिंता और धन का धोखा जब दबाता है तो क्या बन जाता है आगे,
और वह फल नहीं लाता।
फल नहीं लाता, फल नहीं लाने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को कन्वर्ट नहीं करता, लोगों को जाके बदलता नहीं मसीह में, फल लाने का मतलब ये नहीं है। फल लाने का मतलब ये है कि आपने परमेश्वर के सत्य का वचन सुना, उस पर अमल किया और चलने की कोशिश की, ये है फल लाना। सबसे बड़ा काम पहले हमारे बीच में है, हमें वचन सुनना है और उस पर चलना है और अमल भी करना है। सुनना खाली इसलिए नहीं है कि नॉलेज लेने के लिए, अमल के बिना विश्वास मुर्दा है, बिना अमल के विश्वास मुर्दा है। एक जीवित विश्वास होता है, एक मुर्दा विश्वास होता है। जीवित विश्वास पता कौन सा होता है, जीवित विश्वास वो होता है, विश्वास तो आप करते हो, उसको अमल में भी लाते हो। जब अमल में नहीं लेके आना, लाके आना है ना, तो वो विश्वास मुर्दा विश्वास कहलाता है। ये याकूब की किताब में लिखा है ये बात, ठीक है, पढ़ो नहीं मैं ये वैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए इस संसार की चिंता और धन का लोभ है झाड़ियाँ, जो कभी फल नहीं लाने देती, झाड़ियां हैं जो फल नहीं लाने देती, और इस संसार की चिंता किसी भी तरह की कोई भी चिंता हो सकती है, ठीक है। तो ये घोड़े भी उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, मतलब लेकिन इनकी इनकी भी स्वर्गीय उदारता है, लेकिन ये कलीसिया वाले ग्रुप में नहीं है। तो अभी देख लो, तीन ग्रुप कर दिए परमेश्वर ने, ठीक है। एक ग्रुप कौन सा? बुजुर्गों का, वफादारों का ग्रुप। एक ग्रुप प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, अगला ग्रुप भी प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन ये वफादार वाले नहीं है, ये खजूर वाले हैं। दोनों ये जो काला और सफेद घोड़ा कहाँ जा रहा है? स्वर्ग में जा रहा है, स्वर्गीय उद्धार। तो ये है अगला अंतिम जो घोड़े हैं वो पढ़ लो, 6:2 जब कह रहे हैं 6:2।
पहले रथ में लाल घोड़े, दूसरे रथ में काले, तीसरे रथ में श्वेत, और चौथे रथ में छितकबरे और बदामी घोड़े हैं।
अभी ये छितकबरे और ये कौन है? छितकबरे और बदामी, ठीक है। छितकबरे और दो तरह के घोड़े हैं, छितकबरे और बदामी, और मेन चीज है। तो ये दर्शाता है दो तरह के लोग। अब चौथे ग्रुप में भी दो तरह के लोग हैं, दो ग्रुप हैं, समझ गए? चितकबरे और बादामी। चितकबरे मीन दबखड़बे, मल्टी कलर,
दो कलर
दो तीन कुछ भी हो सकते हैं, और बादामी, दो तरह के लोग। पहले चितकबरे, चितकबरे कौन है और बदामी कौन है? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि चौथा ग्रुप जो बचा है वो कौन है? बाकी बची हुई मनुष्य जाति, और इसी में आपके ईसाई भी आ गए, जो नाम के ईसाई हैं, नामी ईसाई। इस जलंधर में पूरे नामी ईसाई हैं। असली ईसाई वो है जिसके पास सत्य होता है, ठीक है। तो इस चौथे ग्रुप में आ जाते हैं ये सब आ जाते हैं। ईसाई भी आ गए, सिख भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, हिंदू भी आ गए, ये सब आ गए। परमेश्वर की योजना में चार तरह के लोग ही हैं। एक तो है बुजुर्ग, एक तो है असली कलीसिया, एक तो है असली कलीसिया में से वो जिन्होंने वाचा बांधी लेकिन वफादार नहीं। तो ये तीन ग्रुप निकल गए, चौथा रह गया है, बाकी बची हुई सारी मनुष्य जाति। इसमें सब आ गए, सब धर्म आ गए, सब जो भी है, सारी बाकी बची हुई मनुष्य जाति आ गई। तो इसमें भी दो तरह के लोग हैं, एक तो चितकबरे और एक तो बदामी। चितकबरे क्या होते हैं? जिन पे दाग लगे, डॉट स्पॉट, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि पाप और मृत्यु की स्थिति में, यानी असंपूर्णता की स्थिति में, और दूसरा है बादामी। ये बादामी कौन है? बादामियों का एक स्वभाव बताया है। बादामी कौन है? यशाया 26:10 में पढ़ लो। तो इसका मैं साधारण करके बताता हूँ आपको। पूरी बाकी बची हुई मनुष्य जाति में दो तरह के लोग होंगे। एक तो परमेश्वर का वचन स्वीकार करके आज्ञा मानकर सीधे हो जाएंगे, और एक सुधरने वाले नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जाति में से एक तो ग्रुप वो है जो जीवन प्राप्त करेगा, और एक ग्रुप वो है जो दूसरी मृत्यु प्राप्त करेगा। तो ये जो बदामी है ये दूसरी मृत्यु वाले हैं। पढ़ लो ये बात, जकरिया 6:7। ये इसको प्रभु यीशु मसीह ने ही एक दृष्टांत में भी बताया है, भेड़ और बकरियों का दृष्टांत। भेड़ वो है जो आज्ञाकारी है, बकरियां वो है जो श्रापित है, परमेश्वर इनको अलग कर देगा। इससे पहले पढ़ लो ये बात, मत्ती 25:41 में पढ़ लो ये बात, 25:41। हाँ जी,
तब वे बाईं ओर बालों से कहेगा, हे श्रापित लोगो,
हे श्रापित लोगो,
मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई।
अनंत आग का मतलब है दूसरी मृत्यु, हमने पढ़ा हुआ है ये बात, दूसरी मृत्यु जो कभी ना बुझ जाम, मृत्यु का कीड़ा कभी खत्म नहीं होता, और तो शैतान और उसके दूत और ये जो ग्रुप जो नहीं सुधरेगा वो तो सब दूसरी मृत्यु में कहाँ क्या हो गए चले जाएंगे। देख लो ये बात, तो ये भेड़ और बकरियों वाला दृष्टांत है। भेड़ क्या होती है, सुनती है, मानती है, बकरी क्या करती है, ठीक है, तो ये बकरी वाला ग्रुप वो है जो सुधरने वाला नहीं है। तो यही यशाया 26 वर्ष में भी बोला, दुष्ट पे चाहे जितनी मर्जी दया कर लो, धर्मराज में भी धर्म नहीं सीखेगा। तो अभी ये छितकबरे तो वो हैं जो मनुष्य जाति वाले जब जी उठेंगे पाप की स्थिति में होंगे, वचन सिखाया जाएगा, सत्य मानेंगे, सुधर जाएंगे। लेकिन ये बदामी वालों का एक बड़े भयानक डर है, पढ़ो 6-7 में, जकरिया 6-7।
सेनाओं का युवा यूं कहता है, उन दिनों में ये
नहीं जिक्र है, 6-7
बदामी घोड़ों ने, बदामी घोड़ों ने निकलकर चाहा कि जाकर पृथ्वी पर फेरा करें, अतः दूत ने कहा जाकर पृथ्वी पर फेरा करो।
तो फेरा करना, इनकी ये बदामी घोड़ों का स्वभाव में क्या है, फेरा करना। अब ये फेरा करने वाला स्वभाव कहीं और भी आता है, पर अयूब 1:7
जिन वस्तुओं को मैं छूना भी नहीं चाहता वही मानो मेरे लिए घिनौना आहार ठहरी
है। अय्यूब 1:7 यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते हुए आया हूँ।
तो ये शैतान का स्वभाव है, घूमने फिरने वाला स्वभाव जो किसका है, शैतान का स्वभाव है। तो ये जो बदामी घोड़े हैं, बदामी घोड़े का मतलब है मनुष्य जाति में, बची हुई मनुष्य जाति में से ये वो ग्रुप है जो शैतान के गुण रखेगा, शैतान का स्वभाव रखेगा। तो ये फिर जाएंगे दूसरी मृत्यु में, कहाँ जाएंगे, दूसरी मृत्यु में। और 6-6 में देख लो, खाली चितकबरे घोड़े उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, लेकिन बदामी घोड़े जो हैं कहीं नहीं जा रहे हैं।
जिस रस में काले घोड़े हैं वह उत्तर दिशा की ओर जाता है,
यानी स्वर्ग की ओर,
घोड़े पीछे पीछे चले जाते हैं
वो भी स्वर्ग की ओर,
और चितकबरे घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं।
तो चितकबरे दक्षिण दिशा, दक्षिण का मतलब है धरती, उत्तर का मतलब है स्वर्ग, दक्षिण का मतलब क्या है, धरती। तो इनको धरती की उदारता मिलेगी चितकबरों को, लेकिन बादामी घोड़े देख लो, नोट करने वाली बात है, किसी दिशा में नहीं जा रहे हैं। तो बादामी घोड़े क्या मतलब क्या है, ये मनुष्य जाति में से बचा हुआ वो ग्रुप है जो आज्ञाएं नहीं मानेगा, सत्य को स्वीकार नहीं करेगा। तो ये फिर सदा की मौत के लिए जाएंगे, दूसरी मौत, दूसरी मृत्यु, जिनके बारे में लिखा है प्रकाशित वाक्य 21:8।
परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारी और टोने और मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग इस झील में मिलेगा जो आग गंदर से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है।
तो दूसरी मृत्यु में ये चले जाएंगे। तो ये है 4 रथ जिनके बारे में एक दृश्य के जरिए जकरिया को दिखलाया कि आदम से लेके प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के बाद जब मनुष्य जाति को परमेश्वर ये राज्य सौंप देगा, 4 तरह के लोग निकलेंगे। पहला ग्रुप चुन लिया गया, दूसरा ग्रुप अभी चल रहा है, चुनाव चल रहा है कलीसिया जो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, शायद 1-2 और साल, बहुत जल्दी पूरा होने वाला है कलीसिया। गिनती 144,000। उसके बाद तीसरा ध्रुव जो खजूर वालों का, उसके बाद संसार की साधारण वार्ता शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक और बड़े सुंदर दृश्य में दिखाया है। पढ़ते हैं, सॉरी अंत में आठवां वचन भी पढ़ लो, छः का आठ दृश्य के अंत।
छः का आठ
जी।
तब उसने मुझसे पुकार कर कहा, देख वे जो उत्तर के देश की ओर जाते हैं उन्होंने वहाँ मेरे प्राण को ठंडा किया है।
तो उत्तर की यानी जो स्वर्गीय उदारता पाते हैं वो लोग मुझे खुश करते हैं, यानी वाचा बांधे हुए संत मुझे अच्छे लगते हैं जब बलिदान चढ़ाते हैं। तो वाचा बांधे हुए ही परमेश्वर की को मन को शांति देते हैं, बिना वाचा बांधे हुए लोगों का परमेश्वर को शांति नहीं मिलती। तो एक और बड़े सुंदर तरीके से परमेश्वर बताता है इसी चीज के बारे में, यशाया 19:25।
क्योंकि सेनाओं का यहोवा उन तीनों को यह कहकर आशीष देगा, धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र और मेरा रथ।
मेरी प्रजा, देखो परमेश्वर की प्रजा मिस्र नहीं थी, परमेश्वर की प्रजा कौन थी? परमेश्वर की प्रजा कौन थी?
क्योंकि सेनाओं का यहोवा उन तीनों को यह कहकर आशीष देगा, धन्य है मेरी प्रजा मिस्र और मेरा रचा हुआ अशूर और बाल इज़राइल।
परमेश्वर की प्रजा तो थी इज़राइल, लेकिन ये देखो यहाँ पे ये चिनात्मिक तौर में यहाँ पे ये बोल रहा मेरी प्रजा मिस्र। तो ये इससे समझ लेना ये बात कि ये साधारण भाषा की बात नहीं है, ये चिन्ह वाली बात है। अभी चिन्ह वाली बात में मिस्र का मतलब क्या है? मिस्र का मतलब है संसार, मिस्र का मतलब है संसार, मनुष्य जाति जो पाप और मृत्यु की गुलाम थी। ठीक है,
इजरायलियों को तो मिस्र से ही तो छुड़ाया था
जी,
एक्चुअली
जी
आता है ना कि इजरायलियों को छुड़ाया था मिस्र देश से।
हाँ,
तो इसलिए भी परमेश्वर ने चिन्हात्मक भाषा में संबोधित किया होगा मिस्र को, इजरायली तो वहीं से गुलामी से छुटे हुए इजरायलियों को है ना
जी। लेकिन
मेरी प्रजा
तो परमेश्वर मेरी प्रजा क्यों बोलेगा फिर?
हाँ, तो वो उनकी पंडित इजरायलियों में से जब यीशु मसीह ने इंग्लिश लिए तो वो संबोधित किया मेरी प्रजा, ऐसा हो सकता है?
किसको? ऐसा हो नहीं,
इजरायलियों को।
हाँ, तो मिस्र को मेरी प्रजा क्यों बोला? तो फिर मिस्र को क्यों बोलेगा? इसराइलियों को बोलेगा ना, इसराइल मेरी प्रजा। नहीं ब्रदर, नहीं, अभी मैं बताने जा रहा हूँ ना, मैं बताने जा रहा हूँ ऐसा हो सकता, बाइबल में हो सकता नहीं है। बाइबल में जो अनुवाद है वो बिल्कुल, हाँ, तो मिस्र जो है, मिस्र का मतलब है, मिस्र जो चिन्ह है इसका मतलब है संसार। ठीक है,
पानी भी संसार।
हाँ, पानी भी संसार। तो मिस्र का मतलब है संसार। फैरो जो मिस्र का राजा था, फैरो और उसकी फौज, जो मिस्र का राजा था जो उसकी फौज थी, फैरो का मतलब है शैतान। फैरो का मतलब क्या है? शैतान। और उसकी फौज का मतलब है शैतान के दूत। मिस्र का मतलब क्या है? संसार। और इज़राइल का मतलब है कलीसिया, जो संसार में गुलामी में थी। तो ये सब चिन्हों का बहुत गहरा मतलब है, बाकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बात समझ लो यहाँ पे परमेश्वर जो बोल रहे हैं ना, मिस्र मेरी प्रजा, इसका मतलब है ये मनुष्य जाति, ये सारी मनुष्य जाति परमेश्वर की क्या है? प्रजा है। तो जब ये सुधर जाएंगे परमेश्वर बोलेगा मिस्र मेरी प्रजा, यानी ये संसार मेरे आज्ञाकारी लोग मेरी क्या है? प्रजा। उसके बाद दूसरा क्या बोलता है? अशूर मेरे हाथों का, अशूर मेरे हाथों का, हाँ अशूर, हाँ अशूर मेरे हाथों का काम। ये कौन है? बुजुर्ग। ये कौन है? अशूर। अशूर जो है तीसरी नदी है हिदिकेल, जो किधर जाती है? अशूर की ओर। तो हमने देखा है पुनरुत्थान की क्लास वाली में, वो अदन की वटिका में चार निकलती नदियां, तीसरी नदी वो है तीसरी उदारता, यानी बुजुर्गों की उदारता। ठीक है, तो ये बुजुर्गों को बोल रहा है। आप परमेश्वर बोला है आदिल से लेके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक, ये मेरे हाथों का काम। और तीसरा बोल रहा है इसराइल मेरी प्रजा। अभी ये इसराइल कौन है? इसराइल है कलीसिया। इसराइल कौन है?
कलीसिया।
ये पढ़ लो बात, गलातियां 6:16।
जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इसराइल पर शांति और दया होती रहेगी।
तो परमेश्वर का इसराइल यानी यह है आत्मिक इसराइल, यह है कलीसिया, यह है 144,000। ठीक है, तो ये है चार रथ और उनका महत्व। अभी आपने एक बात नोट की होगी कि सब घोड़े किसी न किसी दिशा की ओर जा रहे हैं। काले घोड़े उत्तर की जा रहे हैं, सफेद भी उत्तर की तरफ जा रहे हैं, छिटकबरे दक्षिण की ओर जा रहे हैं, लेकिन ये जो
बदामी घोड़े
वो तो दूसरी मृत्यु, लेकिन ये जो लाल घोड़े हैं ये भी किसी दिशा की ओर नहीं जा रहे। तो लाल घोड़े किसी दिशा की तरफ ना जाने का मतलब है ना तो ये स्वर्गीय उदारता में शामिल हुए हैं और ना ही ये धरती की उदारता, धरती की उदारता से थोड़ा बढ़कर इनको, इसीलिए इनको बोला है उत्तम पुनर्थान। 11:35 में पढ़ लो उत्तम पुनर्थान में बोला है। तो इनको थोड़ा मनुष्य जाति से बढ़ के इनाम है। बढ़ के इनाम क्या है? 11:35
स्त्रियों ने
35
स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, जितने तुम मार खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हूँ।
तो उत्तम पुनरुत्थान का मतलब यही है मनुष्य जाति से थोड़ा बढ़कर लेकिन स्वर्गीय उदारता से कम, मतलब ना प्योरली स्वर्गीय और ना प्योरली धरती के, तो ये थोड़ा ऊपर रहेंगे मनुष्य जाति से। ठीक है, तो ये है इन चार मतलब रथों का और उनका महत्व। तो हमारी सलाह इनके बारे में ये है कि ये परमेश्वर के एम्बेसडर्स दूत होंगे, आत्मिक दूत जो दुनिया को मतलब चलाएंगे, दुनिया को गाइड करेंगे, सहायता करेंगे। तो ये सचमुच है परमेश्वर का रहस्य पूर्वक गहरा प्लान मनुष्य जाति के लोगों के लिए, मनुष्य के लिए, इस धरती के लिए। परमेश्वर ही हम सबको आशीर्वाद करे। हमें